नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं।
नमस्कार।
पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक है हमारी वसीयत और विरासत। इसका जो अंतिम अध्याय है आत्मीय जिनों से अनुरोध एवं उन्हें आश्वासन, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे।
हाँ बिल्कुल, ये अध्याय अपने आप में मतलब पूरे उनके जीवन के कार्य का सार जैसा लगता है आत्मीय जनों के लिए।
सही कहा, और हमारा मकसद भी यही है कि पूज्य गुरुदेव का जो संदेश है इसमें उनके अपने लोगों के लिए, प्रज्ञा परिवार के सदस्यों के लिए, उसको ठीक से समझें।
हाँ, क्योंकि इसमें एक अनुरोध भी छुपा है और एक तरह का आश्वासन भी है ना?
बिल्कुल। और जो मुख्य बात उभर कर आती है वो ये कि पूज्य गुरुदेव अपनी जो साधना से प्राप्त विशेष सामर्थ्य थी उसको विश्व स्तर पर लगाना चाहते थे बड़े बदलाव के लिए।
हाँ, विश्व कल्याण के लिए। और इसके लिए उन्होंने बताया कि वो किन किन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं।
हाँ, उन्होंने तीन खास वर्गों का जिक्र किया है। पहला वर्ग तो है दुनिया के प्रभावशाली लोग, जिसे उन्होंने मूर्धन्य वर्ग कहा। इसमें सत्ताधीश, धनाध्यक्ष, वैज्ञानिक, मनीषी, मतलब हर तरह के प्रभावशाली लोग आ गए।
और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ एकदम टॉप लेवल की बात नहीं कर रहे थे, उच्च और मध्यम दोनों स्तरों पर जुड़ने का उनका इरादा था।
हाँ, ये बात सोचने वाली है, ऐसा क्यों?
देखिए, उनका मानना था, और ये काफी व्यवहारिक सोच है, कि जो बिल्कुल शिखर पर होते हैं वो कई बार अहंकारी हो सकते हैं, अपने विचारों पर बहुत ज्यादा अड़े हुए, आग्रही जिसे कहते हैं।
अच्छा,
तो अगर मध्यम स्तर के प्रभावशाली लोगों को भी साथ लिया जाए तो विचार नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है, एक तरह से दो तरफा प्रभाव।
ये तो बदलाव लाने का एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका लगता है, ऊपर से भी और बीच से भी।
बिल्कुल।
अच्छा, तो ये हुआ पहला वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा था?
दूसरा वर्ग उन्होंने कहा जागृत आत्माएं, और उनका मानना था कि भारत में तो ऐसी आत्माएं हमेशा से ज्यादा रही हैं जहां इतने ऋषि मुनिषि हुए।
हाँ, ये तो है। तो इन जागृत आत्माओं से वो क्या चाहते थे?
उनसे उनका एक खास आग्रह था कि भाई, आप लोग सांसारिक मोह, जो व्यामोह है, उसे थोड़ा कम करें और युग की जो जरूरत है, युग धर्म, उसको समझें, और अपने जो भी साधन है, समय, प्रतिभा, प्रभाव, उन्हें बीज की तरह बोएं, एक से हजार बनाने वाली बात।
अच्छा, मतलब अपने संसाधनों को मल्टीप्लाई करें मिशन के लिए।
एग्जैक्टली। ये उनकी जो पूरी वैश्विक विचार क्रांति की योजना थी, या ब्रेन वॉशिंग जिसे वो प्रज्ञा अभियान कहते थे, मतलब सकारात्मक तरीके से सोच बदलना, ये उसी का हिस्सा था। वो चाहते थे कि जो समर्पित लोग हैं वो तीर की तरह तेजी से अपने लक्ष्य को साधें।
और उन्हें ये भी लगता था कि इन आत्माओं को अंदर से कोई पुकार महसूस होगी, कोई झकझोरेगा।
हाँ बिल्कुल, वो कहते थे कि कोई कोंचता कुरेतता महसूस होगा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये अंदर की पुकार वाकई जड़ता तोड़ सकती है?
हाँ, ये एक बड़ा सवाल है।
पर पूज्य गुरुदेव इसे लेकर काफी आश्वस्त थे। वो मिसाल देते थे ब्रह्म मुहूर्त में बांग देते मुर्गे की।
अच्छा।
हाँ, कि जैसे मुर्गे की बांग सोए हुओं को जगा देती है, वैसे ही उनकी जो सूक्ष्म प्रेरणा है वो इन जागृत आत्माओं तक पहुंचेगी और उन्हें जगाएगी, उन्हें सक्रिय करेगी।
ये उनके सूक्ष्म जगत से काम करने की क्षमता पर गहरे विश्वास को दिखाता है।
बिल्कुल।
और फिर तीसरा वर्ग जो सबसे करीब का था, प्रज्ञा परिवार।
हाँ, उनके अपने परिजन।
यहाँ वो सिर्फ एक संगठन की सदस्यता की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बहुत गहरे संबंध की बात कर रहे थे, कई जन्मों का संबंध।
हाँ, उन्होंने लिखा है अनेक जन्मों का स्मरण, पूर्व संचित सघनता, जैसे माता पिता और बच्चों का एक सहज वात्सल्य होता है वैसा रिश्ता।
लेकिन फिर ये बात के अब प्रत्यक्ष मिलना जुलना बंद होगा, इसका क्या मतलब था अनुयायियों के लिए? लोग तो अक्सर अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं लेकर आते थे उनसे मिलने।
हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न था उस समय। पूज्य गुरुदेव ने इसे समझाया। उन्होंने कहा कि ये जो स्थूल शरीर से लगातार मिलना जुलना है, ये उनकी सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया में, मतलब अपने स्थूल रूप को छोड़कर सूक्ष्म रूप में ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने की तैयारी में एक तरह से बाधा डाल रहा है।
अच्छा, यानी एक बड़े लक्ष्य के लिए ये जरूरी था।
हाँ, मानवता के भविष्य से जुड़ा जो बड़ा लक्ष्य था उसके लिए ये सूक्ष्मीकरण जरूरी था। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्वासन भी दिया।
और वो क्या था?
आश्वासन ये था कि अगर अनुयायी अपने अंदर की संवेदनशीलता को परिष्कृत करें, जिसे उन्होंने भाव संवेदना क्षेत्र कहा है, उसे जगाएं, तो वे उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को पहले से भी कहीं ज्यादा गहराई से महसूस कर पाएंगे।
मतलब स्थूल शरीर न होते हुए भी?
हाँ, उनका सूक्ष्म शरीर, जो उन्होंने कहा कि पुस्तक लिखने के समय के अनुसार सन 2000 तक सक्रिय और सहायक रहेगा, उसके माध्यम से जुड़ाव और गहरा हो जाएगा। उन्होंने इसकी तुलना अपने गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति के अनुभव से भी की।
तो रिश्ता खत्म नहीं हो रहा था बल्कि बदल रहा था, स्थूल से सूक्ष्म, शायद और भी मजबूत।
बिल्कुल, शायद और घनिष्ठ, पर इसकी शर्त थी अनुयायी की अपनी आंतरिक पात्रता का विकास।
और फिर इसी कड़ी में वे अपने इन बच्चों मतलब प्रज्ञा परिजनों से एक अनुरोध भी करते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे माता पिता बच्चों से कुछ उम्मीद रखते हैं।
वैसे ही।
क्या अनुरोध था वो?
वो चाहते थे कि परिजन मिशन के लिए अब और ज्यादा समय और साधन दें, समयदान और अंशदान बढ़ाएं, क्योंकि जो आने वाला काम है वो बहुत बड़ा है।
और उन्होंने तुलना भी की है ना कृष्ण के ग्वाल बालों से, हनुमान की वानर सेना से। हाँ, कि जैसे वो दिखने में साधारण थे पर उन्होंने कितने महान काम किए, वैसे ही प्रज्ञा परिजन भले ही साधारण दिखें पर उनमें क्षमता बहुत है, जैसे भेड़ों के झुंड में पला शेर का बच्चा।
और फिर उन्होंने अपना खुद का उदाहरण भी दिया है कि कैसे उन्होंने शुद्रता छोड़ी और महानता को अपनाया।
हाँ, कि जैसे उन्होंने लोभ मोह का, शुद्रता का लबादा उतारा और आत्मा की आवाज सुनकर महानता का परिधान पहना, और इसी को वो आध्यात्मिकता का सार बताते हैं।
क्या सार है वो?
आंतरिक पवित्रता और बाहरी प्रखरता का समन्वय, मतलब अंदर से पवित्र बनो और बाहर समाज के लिए, अच्छे कामों के लिए उतने ही प्रखर, उतने ही एक्टिव बनो। ये सिर्फ त्याग नहीं है बल्कि श्रेष्ठता को धारण करना है।
तो अगर हम इस पूरे अध्याय का सार देखें तो ये वसीयत और विरासत एक तरह से अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा है, एक गाइडेंस है।
हाँ, कि पूज्य गुरुदेव के जीवन को सिर्फ घटनाओं के क्रम में ना देखो बल्कि उसमें जो आध्यात्मिक सिद्धांत काम कर रहे थे, साधना से सिद्धि मिलना, ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाना, उसे समझो और अपनाओ।
और साथ ही ये आश्वासन कि अगर आंतरिक पात्रता, वो संवेदनशीलता विकसित की जाए तो गुरु का साथ सूक्ष्म रूप में हमेशा बना रहेगा, शायद और भी मजबूती से।
बिल्कुल, और इसके साथ जुड़ा हुआ है वो स्पष्ट अनुरोध कि मिशन के प्रति समर्पण कम न हो बल्कि और बढ़े, समय और साधन का योगदान बढ़े।
अंत में एक विचार मन में आता है, पूज्य गुरुदेव जीवन से सीखने पर बहुत जोर देते हैं कि सत्य को खोजो, देखो कि सफलता कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, और फिर उसका अनुकरण करो।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
तो ये जो सिद्धांत है कि किसी के जीवन के उदाहरण से सीखा जाए, न कि सिर्फ उसके शब्दों को पढ़ा जाए, इसे आज के समय में कैसे लागू किया जा सकता है, ये एक सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, ये प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। किसी के जीवन को, उसके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना, यही असली सीखना है।